दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी सबूत। आज 14 जुलाई 1995 है, दोपहर का वक्त है। बाहर इस धुआंधार बारिश की वजह से शाम होने का एहसास हो रहा है। एलिफिस्टन रोड पर गली नंबर 17 का सन्नाटा पुलिस टीम की मौजूदगी से लगभग खत्म सा है। इंस्पेक्टर कामत गली के आखिरी छोर पर सड़क के किनारे पड़ी एक महिला की लाश को बड़े ध्यान से देख रहे हैं।
दयाल, ये उसी पागल खूनी का काम है। ये पिछले 3 कत्ल की ही तरह है। इसका गला भी बाकी लड़कियों की तरह रस्सी से घोंटा गया है। गले पर यह निशान देखो, इस निशान का क्लोज फोटोग्राफ लेने को बोलो। उसकी रस्सी पर कुछ मेटल का रिंग जैसा है, शायद अंगूठी जैसा कुछ, स्टील या लोहे की। ये निशान उसी चोट का है। और कामत सर, ये कटी हुई उंगलियां?
हाँ, ये उसके पागलपन की एक और निशानी है। खून करने के बाद वो बाएं हाथ की 2 उंगलियां काट कर ले जाता है, यही उसका ट्रेडमार्क है। और वो कोई अपना सबूत नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये है दयाल कि खूनी पागल तो है, पर इतना नहीं। हमें किसी भी तरह उसे ढूंढ निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि वो कोई अगला शिकार करे।
इधर राजनगर में सनराइज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 204 के अंदर।
मिता, देखो मिता, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो।
अमित, जो कुछ भी मैंने आज देखा है उसके बाद भी समझने को कुछ बाकी रह गया है?
देखो देखो मिता, वो तुम्हारा एक शक है। वो लड़की मेरी दोस्त है, बस। मेरा ऐसा कुछ संबंध नहीं है।
दोस्त? अमित, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। वो तुम्हारे इतने करीब बैठी हुई थी कि उसका सर तुम्हारे कंधे पर था।
मेरे कंधे पर सर? मीता नहीं, जरूर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है।
ऑल राइट, मैं अंधी हूँ, मैं अंधी हो चुकी हूँ। सच तो ये है कि मैंने तुम पर विश्वास करने की गलती की है।
मीता, मैंने ऐसा क्या किया है?
कुछ नहीं किया है तुमने, सिवाय अय्याशियों के। पिछले 5 साल से तुम ऐश कर रहे हो, वो भी मेरे पैसे पर। जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, और अब ये लड़कियों का नया शौक।
नहीं, मीता, ये गलत है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ।
नहीं अमित, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हो। तुमने खुद तो एक पैसा कमाया नहीं। तुम क्या जानो पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। नाउ इट्स अ लिमिट, अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
मिता, अब तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? क्या हम कहीं जा रहे हैं?
हम नहीं, केवल तुम जा रहे हो अमित। मैं तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो पति पत्नी के रिश्तों का अपमान करे। मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट।
कुछ महीनों बाद स्काई ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में।
नो प्रॉब्लम सर। ऑल राइट सर, मैं आपकी टिकट आपके ऑफिस भिजवा दूंगी। इज इट ऑल राइट? ओके, एनीथिंग एल्स सर? ओके, बाय बाय सर, हैव अ गुड डे।
आज तो दिन बहुत थका देने वाला था, भूख भी बहुत लग रही है। मीता, चल आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं।
तू जा यार, मेरा मूड नहीं है।
मैं तो तंग आ गई हूँ तेरे मूड के बारे में सुन सुन के। और फिर तेरा डिवोर्स ही तो हुआ है, कौन सा तेरी दुनिया लुट गई है यार।
तू नहीं समझेगी यार, तेरी शादी जो नहीं हुई है।
मीता, मैं सब समझती हूँ, पर तू नहीं समझ रही है। मीता, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़कियाँ हैं, हमारा खुद से एस्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस है यार, किसी मर्द से कम नहीं है हम।
तुर भी, तू नहीं समझेगी, औरत जब किसी रिश्ते में बन जाती है ना, उस रिश्ते से लाख बेवफाई मिले लेकिन वो उसे भुला नहीं पाती है।
अब तू बेवकूफी की बातें कर रही है, डिवोर्स का फैसला तेरा अपना था तो फिर अफसोस किस बात का। मीता, बाहर की दुनिया में निकल, तू 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी तो फिर तेरी उदासी भी दूर हो जाएगी, और फिर कोई ना कोई दूसरा जीवन साथी तो तुझे मिल ही जाएगा।
उसकी शादी कभी नहीं करूंगी, मर जा से सख्त नफरत है मुझे।
अब तू टिपिकल हिंदुस्तानी औरतों की तरह बात कर रही है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते।
सकता है तू सही हो, लेकिन अब ये मुझसे नहीं होगा कि मैं लोगों से फिर से मिलूं, जुलूं, समझूं और फिर से शादी कर लूं।
ता, क्या जरूरी है कि लव मैरिज ही हो? अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है ना। और फिर आजकल न्यूज़पेपर में कितने अच्छे रिश्ते आते रहते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम में।
एक सप्ताह बाद मीता के घर पर।
हाय।
अरे सुरभि, इस वक्त कैसे आना हुआ?
बस यूं ही, खाना पकाने का मूड नहीं था तो सोचा चलो तुम्हारे घर दावत उड़ा लूं।
व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम।
थैंक यू।
मैंने बस अभी अभी खाना बनाना शुरू ही किया था, अब 15-20 मिनट लगेंगे, खाना रेडी हो जाएगा। तुम एक काम करो, चल के तब तक ड्राइंग रूम में बैठो।
सुरभि मीता के ड्राइंग रूम में बैठते ही टेबल पर रखे आज का न्यूज़पेपर खोलते हुए जोर से कहती है,
अच्छा सुन ना, खाने के बाद फिल्म देखने चलेंगे।
नहीं यार, आज बहुत दिनों के बाद फुर्सत मिली है ना, चल बैठ के गपशप करेंगे।
चलो ये भी ठीक है।
ये क्या पढ़ रही हो तुम?
ओ, अपनी प्यारी सहेली के लिए प्यारा सा वर्ड ढूंढ रही हूँ।
तुम नहीं सुधरोगी।
अरे सुन तो, लड़का इंजीनियर है, 25,000 से ज्यादा कमाता है, वेल एजुकेटेड जेंटलमैन, और जात पात का भी कोई टेंशन नहीं है। बोल, इंटरेस्टेड है?
सुन, तेरे लिए अच्छा रहेगा ना सुरभि, तू ही कर ले।
या, एक दूसरा सुन। वांटेड, ब्यूटीफुल, ब्रॉड माइंडेड, वेल एजुकेटेड, अरे ये सब बातें तो तुझ में है ही। लड़का स्मार्ट, हैंडसम, बिजनेसमैन, डिवोर्सी भी है, वंस अ फेथफुल पार्टनर। ता, मेरी बात मान, तू इस एड का ना रिस्पांस दे दे, इसी तरह सोचती रह जाएगी ना तो बुढ़ापा आ जाएगा और फिर कोई घास नहीं डालेगा तेरे को। और फिर मिलने और देखने में हर्ज क्या है, कौन सा तुझे उससे मिलके शादी ही करनी है, बाद में आराम से सोचियो।
आखिर तुम नहीं मानेगी सुरभि, चल ठीक है।
हुई ना बात।
दो सप्ताह बाद।
दिस 842233, मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दे, मैं वापस आकर फोन करूंगी। थैंक यू।
मैं वर्मा बोल रहा हूँ, दिवाकर वर्मा। मेरी आवाज जो है वो ऐसे ही है, मेरी मैट्रिमोनियल ऐड का जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर हम दोनों आज शाम को मिल सके ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके, इफ यू डोंट माइंड, तो मैं आज शाम 8 बजे रिवर टच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 7 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय।
शाम के 8 बजे रिवर टच गार्डन रेस्टोरेंट में।
सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसके आने के बाद ऑर्डर करूंगा। अच्छा ठीक है सर।
एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर दिवाकर वर्मा है?
जी जी जी, आप शायद मीता जी हैं, बैठिए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मीता जी, डोंट माइंड, मेरी आवाज ऐसे ही है, आपको रेस्टोरेंट ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई?
बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ अमित के साथ।
अमित? अमित?
उधर शहर के किसी दूसरे बार में।
अब बस भी कर यार अमित, कितनी पिएगा?
कितनी पीऊंगा?
अबे इस बार में जितनी भी है ना वो पी जाऊं ना तो भी मेरे लिए कम है यार। तू जानता नहीं कि दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी मैं हूं। यार अमित, तू क्या मीता से अभी उतना ही प्यार करता है?
हाँ करता हूँ उससे प्यार,
तो जा जाके मीता से माफी मांग ले, उसके सामने तू रो, गिड़गिड़ा, उसके पैरों पे गिर जा।
ठीक कहता है भाई तू, मैं अभी जाता हूँ मीता के पास।
कुछ देर बाद अमित मीता के बंगलों के अंदर पहुंच गया।
मीता, मीता, मीता कहाँ हो? मीता,
मीता,
मीता को सब जगह तलाशने के बाद अमित थककर सोफे पर धड़ाम से बैठ जाता है। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे टेलीफोन पर टिक जाती है। उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना एंसरिंग मशीन को सुना जाए।
हाय मीता, मैं साधना बोल रही हूँ। मेरे बॉस के लिए कल की बॉम्बे की फ्लाइट टिकट करवा दो। इट्स अर्जेंट प्लीज, मैं घर पर ही हूँ, मुझे वापस फोन करना। थैंक यू।
हाय मीता, मैं सुरभि बोल रही हूँ। आज तुम रिवर टच गार्डन में गई कि नहीं, ये जानने के लिए फोन किया था यार। और सुन, अगर कोई अच्छी खबर है ना तो मुझे जल्द से जल्द फोन कर दियो। ओके, बाय बाय।
हाय, मैं वर्मा बोल रहा हूँ, दिवाकर वर्मा। मेरी आवाज जो है वो ऐसे ही है। मेरी मैट्रिमोनियल ऐड के जवाब में तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोनों आज शाम को मिल सके, ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सके। इफ यू डोंट माइंड तो मैं आज शाम 8 बजे रिवर टच गार्डन रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 7 पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय।
नहीं मीता, मेरी नहीं हो सकती तो उसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा।
अमित गुस्से से पागल हो एंसरिंग मशीन से कैसेट निकालकर मीता के बंगलों से बाहर आ जाता है। रात के 9:30 बजे रिवर टच गार्डन रेस्टोरेंट में।
अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद ही चली जाती।
नहीं, तकलीफ की कौन सी बात है, मैं आपको छोड़ के आता हूँ ना। आइए आइए ना।
रात के 11:30 बजे अर्थला राजनगर। हर तरफ घुप अंधेरा। अंधेरा इतना घना है कि स्ट्रीट लाइट का होना न होने के बराबर है। आसमान में बादल गरज रहे हैं। लगता है थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होगी। तभी अंधेरे को चीरती हुई लाल कलर की वैगन आर गली नंबर 9 के एक मकान के आगे रुकी।
तुम यहाँ किस लिए आए हो?
दरवाजा बंद करके जल्दी से अंदर आ जाओ।
तो मर गई और मेरे लिए छोड़ गई लाखों रुपए। लेकिन रेस्टोरेंट मैं तो कह रही थी कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। देखो मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, डिवोर्स हुआ नहीं है अब तक। मैं उसका कानूनी पति हूँ और उसकी जायदाद का इकलौता वारिस भी। मेरे पैसे लाए हो?
ये रहे, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अपने काम में सचमुच माहिर हो। पुलिस आज तक चक्कर में है कि ये सारे खून किसी पागल खूनी ने किए हैं। मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मीता पर इतनी आसानी से काबू पालोगे। इसीलिए मैं तुम दोनों के पीछे गया था उस रिवर टच गार्डन रेस्टोरेंट में।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। दोनों के बीच ये तय हुआ था कि तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। मर्डर स्पॉट के आस पास भी नजर नहीं आओगे तुम।
चला गया तो क्या फर्क पड़ गया?
फर्क पड़ गया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और तुम एक अनाड़ी। तुम्हारी जरा सी भूल
मुझे खतरे में डाल सकती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ बार में बैठो ताकि जरूरत पड़ने पर गवाही दी जा सके। मर्डर के वक्त तुम उसके साथ थे, तुमने सब गड़बड़ कर दिया।
क्या गड़बड़ हो गई? अरे क्या गड़बड़ हो गई? एक बात सुनो, हमारा प्लान कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर सुरभि मीता को मैट्रिमोनियल कॉलम में अप्लाई करने के लिए राजी न किया होता, समझे तुम?
जी जी जी, ये सुरभि कौन है?
सुरभि मेरी होने वाली बीबी है, बाहर कार में बैठी है। मतलब सुरभि को भी सब कुछ पता है?
हाँ, वो शुरू से ही इसमें मेरे साथ है। तुमने
मेरे साथ धोखा दिया है। पहले क्यों नहीं बताया कि सुरभि भी इसमें शामिल है?
देख यार, तुम खामाखा गुस्सा हो रहे हो। आज तुमने इतनी बड़ी गलती की जिसकी वजह से हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे हो सकते थे।
मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कभी कोई सुराग नहीं छोड़ता।
अच्छा, तुम कभी कोई सुराग नहीं छोड़ते? मीता के टेलीफोन रिकॉर्डर से तुम्हारे लिए कैसेट लाया हूँ, इसमें तुम्हारी आवाज रिकॉर्डेड है। अगर ये पुलिस के हाथ लग जाता तो मेरा एहसान मानो कि मैं वहां पहुंच गया और ये मेरे हाथ लगा।
इसका मतलब कि तुम मीता के घर भी गए थे?
यह कहते कहते दिवाकर अमित के ऊपर झपटा। दिवाकर के हाथ में जो रस्सी है वो अमित के गर्दन पर कसती जा रही है। कोई चारा न देख अमित बहुत मुश्किल से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लेता है। रिवॉल्वर दिवाकर की तरफ है और दिवाकर के हाथ की रस्सी अमित के गले पर कसती जा रही है कि तभी बाहर पार्किंग में सुरभि गोली की आवाज सुनकर कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाती है।
अगले दिन सुबह, तो मैट्रिमोनियल कॉलम में ऐड देकर लड़कियों को फंसाता था। दयाल, बोर्ड का फोटो ले लो। शायद यही वो रस्सी है जिससे लड़कियों का गला घोंटकर मारा गया है। ये देखो दयाल, मेटालिक रिंग जिसका निशान हर लाश के गले पर मिलता था।
और सर ये चाकू, हो सकता है इसी चाकू से उंगलियां काटी गई हो।
लो ये चाकू और ये रस्सी, ये सारी चीजें कस्टडी में ले लो और दयाल लाश की अच्छी तरह से फोटो निकलवाओ और सभी प्रेस में भिजवा दो। कल सुबह हर अखबार में ये खबर छप जानी चाहिए कि पागल खूनी ने खुदकुशी कर ली, और पागल खूनी कोई और नहीं बल्कि अमित श्रीवास्तव ही है।
अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी सबूत। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।